एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिन्होंने वाकई सोचने के मायने बदल दिए, रेने देकार्त। उन्हें आधुनिक दर्शन शास्त्र का पिता भी कहते हैं, और ये कोई छोटा तमगा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, सचमुच ये बहुत बड़ी उपाधि है। और देकार्त सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, वो गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी।
हाँ,
उनका सबसे बड़ा कारनामा शायद ये था कि उन्होंने ज्ञान की जो नींव थी ना, उसे सदियों पुरानी मान्यताओं से और कह लीजिए धार्मिक सत्ता से हटाकर व्यक्ति के अपने तर्क पर टिका दिया।
अच्छा,
ये 17वीं सदी के यूरोप के लिए आप सोचिए एक भूचाल जैसा था।
बिल्कुल, एक क्रांति ही समझिए इसे। तो आज हम इसी क्रांतिकारी सोच को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ।
कि भाई कैसे उन्होंने शक करने को ही ज्ञान पाने का एक रास्ता बना दिया। और वो जो उनके मशहूर शब्द है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका असल मतलब क्या है, गहराई क्या है इसमें?
हाँ, इस पे बात करेंगे।
और क्या आज भी उनके विचार हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं? तो हमारी ये जो बातचीत है, ये देकार्त पर जो शोध है और हमें मिले स्रोतों पर आधारित है।
हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद है देकार्त की जिंदगी, उनके वो झकझोर देने वाले विचार, उनकी खास किताबें।
और उनकी विरासत।
हाँ, और वो विरासत जिसने पश्चिमी सोच पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है, उसको थोड़ा खंगालना। और कोशिश यही रहेगी कि ये सब एक दिलचस्प बातचीत की शक्ल में सामने आए।
तो चलिए शुरू करते हैं, उस दौर से शुरू करते हैं जिसमें देकार्त जी रहे थे। 17वीं शताब्दी का यूरोप कैसा था वो वक्त? मैंने सुना है बड़ी उथल पुथल थी तब।
उथल पुथल शायद कम शब्द है इसके लिए, वो बौद्धिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से एक तूफानी दौर था।
अच्छा।
हाँ, एक तरफ तो देखिए वैज्ञानिक क्रांति जोरों पर थी, गैलीलियो जैसे लोग थे, वो अरस्तु और चर्च की जो पुरानी समझ थी ना ब्रह्मांड की, उसको चुनौती दे रहे थे।
जैसे कि धरती केंद्र नहीं है।
वैसी बात है, बिल्कुल, कि धरती केंद्र नहीं है, सूरज घूमता है या धरती घूमती है, तो ऐसी बातों से ज्ञान की पुरानी इमारतें हिल रही थीं।
तो एक तरह का बौद्धिक संकट कह सकते हैं कि भाई पुरानी बातें गलत साबित हो रही हैं, तो फिर सच क्या है उसे जाने कैसे?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एक संकट था। पहले स्कॉलास्टिक दर्शन चलता था ज्यादातर,
वो क्या था?
वो ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु के तर्क का एक मिश्रण था, सदियों से चला आ रहा था, लेकिन अब उस पर सवाल उठ रहे थे। तो इसी माहौल में देकार्त जैसे विचारक आए, वो कह रहे थे कि ज्ञान का आधार कोई बाहरी सत्ता नहीं जैसे चर्च या पुरानी किताबें, बल्कि इंसान का अपना तर्क होना चाहिए, अपना अनुभव।
अच्छा।
और ऊपर से 30 वर्षीय युद्ध भी चल रहा था 1618 से 1648 तक, उसने धर्म के नाम पर यूरोप में भयानक तबाही मचाई थी।
अच्छा, तो ये सब मारकाट, ये धार्मिक कट्टरता, ये सब देखकर ही शायद देकार्त को लगा होगा कि भाई हमें किसी ऐसी पक्की चीज की तलाश करनी है जिस पे कोई शक न कर सके, जो सिर्फ तर्क पर टिकी हो।
हाँ, बहुत हद तक यही लगता है, इन सारे झगड़ों से परे वो एक अटल निश्चित सत्य खोजना चाहते थे।
और उस जमाने में और भी बड़े विचारक थे, हॉब्स, पास्कल।
अरे हाँ बिल्कुल, थॉमस हॉब्स थे, ब्लेज पास्कल थे, पियरे डी फार्मा, फ्रांसिस बेकन, कई बड़े नाम थे, सब अपने अपने तरीके से ज्ञान की नई राहें खोज रहे थे।
देकार्त खुद फ्रांस के एक पढ़े लिखे सम्मानित कैथोलिक परिवार से थे, मतलब ठीक ठाक पृष्ठभूमि थी उनकी।
चलिए अब जरा उनके निजी जीवन पर आते हैं। उनका जन्म हुआ 1596 में फ्रांस में ही, लाहे एन तुरेन नाम की जगह पर।
हाँ, जो अब उनके नाम पर देकार्त कहलाता है।
अच्छा, और शिक्षा भी उनकी काफी अच्छी हुई थी सुना है।
हाँ, उनकी शुरुआती पढ़ाई लाफ्लैश के बहुत ही प्रतिष्ठित जेजुइट कॉलेज में हुई।
ओह, वहां उन्होंने गणित, दर्शन, विज्ञान सब कुछ पढ़ा, बहुत कठोर शिक्षा थी।
तो कैसा रहा उनका अनुभव?
देखिए गणित में तो उनका दिमाग बिजली की तरह चलता था, उसमें वो कमाल थे,
हाँ,
लेकिन बाकी विषयों से उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्हें लगा कि इन विषयों की नींव ही बहुत कमजोर है, मतलब सब सुनी सुनाई बातों पर टिका है, कोई पक्की बात नहीं है।
तो जो निश्चितता उन्हें गणित में मिली
बिल्कुल
वो बाकी ज्ञान में नहीं दिखी।
बिल्कुल, फिर उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, डिग्री ली, लेकिन उसके बाद सेना में भर्ती हो गए।
सेना में दार्शनिक बनने वाला व्यक्ति सेना में?
हाँ, और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया।
क्या हुआ ऐसा?
यह उनके जीवन का एक बहुत ही नाटकीय, शायद सबसे अहम मोड़ था। 10 नवंबर 1619 की रात, वो तब जर्मनी में थे एक सैनिक के तौर पर,
हाँ,
उस रात उन्होंने 3 बहुत गहरे और अजीब सपने देखे।
सपने।
हाँ सपने, और उन्हें लगा कि ये कोई कोई दैवीय संदेश है, कोई इशारा है ऊपर से।
अच्छा, कैसा इशारा?
उन्हें लगा कि ये सपने उन्हें एक नया एकीकृत विज्ञान बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं, एक ऐसा विज्ञान जो गणित की तरह ही बिल्कुल तर्क पर आधारित हो,
निश्चित हो।
अरे वाह, बस यहीं से उनका वो दार्शनिक मिशन शुरू हो गया जो जिंदगी भर चला।
कमाल है, मतलब एक सपने ने दुनिया के महानतम विचारकों में से एक को प्रेरित कर दिया। तो इस अनुभव के बाद फिर उन्होंने क्या किया? सुना है वो नीदरलैंड चले गए थे।
सही सुना है, उन्हें अपने विचारों पर शांति से काम करने के लिए ज्यादा खुला माहौल चाहिए था, थोड़ी बौद्धिक आजादी।
फ्रांस में नहीं थी उतनी
शायद, नहीं, या उन्हें ऐसा लगा। तो 1628 में वो नीदरलैंड चले गए और करीब 20 साल वहीं रहे।
और ये दौर उनके लिए काफी अच्छा रहा।
हाँ, ये उनकी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव, सबसे उर्वर दौर था। यहीं उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उनके एक आदत भी थी वैसे।
क्या?
देर तक सोने की। सुबह बिस्तर में पड़े रहते थे। कहते थे सबसे अच्छे विचार उन्हें सुबह बिस्तर में लेटे लेटे ही आते हैं।
क्या बात है, मतलब देर तक सोना उनके लिए फायदेमंद था। तो उनकी पहली बड़ी किताब कौन सी थी इस दौर की?
वो थी 1637 में आई डिस्कोर्स ऑन द मेथड, हिंदी में कह सकते हैं कार्य प्रणाली पर विमर्श।
अच्छा,
ये सिर्फ दर्शन की किताब नहीं थी, इसमें उनकी आत्मकथा के हिस्से भी थे और इसे उन्होंने अपने कुछ वैज्ञानिक लेख लिखे थे उनकी भूमिका के तौर पर पेश किया था।
और इसी किताब में उन्होंने अपने उस मशहूर शक करने के तरीके के बारे में बताया था, है ना, कि हर चीज पर शक करो।
हाँ, उनका मेथड ऑफ डाउट, प्रणालीगत संदेह।
हाँ, शक करते जाओ जब तक कि कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जिस पर शक करना नामुमकिन हो।
बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये शक सिर्फ शक करने के लिए नहीं था, ये नास्तिकता नहीं थी।
अच्छा, तो फिर?
ये शक एक रास्ता था, एक तरीका था, शक से परे एक ठोस निश्चित जमीन खोजने का।
और वो जमीन मिली उन्हें?
हाँ, और क्या खूब मिली। इसी खोज में उन्हें वो मिला जिसे वो अपना पहला सिद्धांत मानते हैं, जोपोंस डोंग जोसुई, फ्रेंच में, लैटिन में कोजिटो अर्गो सोम।
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
हाँ, उन्होंने महसूस किया कि वो हर चीज पर शक कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर, क्या पता वो धोखा दे रही हो, इस दुनिया पर, क्या पता ये सपना हो, शायद भगवान पर भी, क्या पता वो धोखेबाज हो।
बाप रे।
लेकिन एक चीज थी जिस पर वो शक नहीं कर सकते थे।
वो क्या?
वो ये कि वो शक कर रहे हैं, कोई है जो ये सब सोच रहा है, जो शक कर रहा है, और शक करना क्या है, सोचना ही तो है।
हाँ,
इसलिए सोचने का ये जो काम है, ये जो एक्ट है, यही उनके खुद के अस्तित्व का सबसे पहला, सबसे पक्का अकाटी प्रमाण बन गया।
ये तो सचमुच जबरदस्त खोज थी। मतलब ज्ञान की शुरुआत किसी बाहरी किताब या गुरु से नहीं, बल्कि अपने अंदर से, अपने होने के एहसास से।
एग्जैक्टली, ये बुनियाद थी, पहली ईंट।
और उन्होंने इसे फ्रेंच में लिखा था, लैटिन में नहीं, ये भी बड़ी बात थी शायद।
हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था उस जमाने में। देखिए, जो भी गंभीर अकादमिक लेखन होता था वो लैटिन में होता था।
हाँ, विद्वानों की भाषा।
बिल्कुल, फ्रेंच में लिखकर वो अपने विचारों को सिर्फ लैटिन जानने वाले विद्वानों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो आम पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचना चाहते थे। अच्छा, इसके बाद आई उनकी शायद सबसे जरूरी दार्शनिक किताब, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, प्रथम दर्शन पर ध्यान, 1641 में।
हाँ, ये उनकी मास्टरपीस मानी जाती है दर्शन में।
इसमें क्या था, क्या ये डिस्कोर्स से अलग थी?
इसमें उन्होंने डिस्कोर्स वाले विचारों को ही और ज्यादा गहराई से, और ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से, और मजबूत तर्कों के साथ पेश किया।
अच्छा, ये 6 ध्यानों यानी मेडिटेशंस का संग्रह है, जैसे कोई व्यक्ति बैठकर बिल्कुल एकांत में गहन चिंतन कर रहा हो, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, ऐसे। इसमें वो तर्क के सहारे ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते हैं, आत्मा के अमर होने की बात करते हैं, और सबसे अहम, वो मन और शरीर के बीच के बुनियादी फर्क को स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
मन यानी जो सोचता है, और शरीर यानी जो भौतिक है।
हाँ, मन जो अभौतिक है और शरीर जो भौतिक है, जगह घेरता है, यहीं से वो ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी की जो आधुनिक बहस है ना, कि ज्ञान क्या है, हमें कैसे मिलता है, उसकी नींव रखते हैं।
मन और शरीर का ये अलगाव, ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। अच्छा, उनकी और कौन सी प्रमुख किताबें थीं?
इसके बाद 1644 में आई प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के सिद्धांत।
ये कैसी थीं?
ये एक तरह से उनकी पूरी सोच का एक निचोड़ था, इसे उन्होंने यूनिवर्सिटी टेक्स्टबुक की तरह लिखा था। उनका इरादा था कि विश्वविद्यालयों में अरस्तु के जो पुराने ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनकी जगह इसे पढ़ाया जाए।
अच्छा, महत्वाकांक्षी थे वो।
ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देखने का नजरिया पेश किया, और फिर 1649 में उनकी आखिरी बड़ी किताब आई, द पैशंस ऑफ द सोल, आत्मा की भावनाएं।
इसमें क्या था?
इसमें उन्होंने भावनाओं पर फोकस किया, इमोशंस पर, और मन शरीर का जो रिश्ता है उसे भावनाओं के जरिए समझने की कोशिश की।
अच्छा, चलिए अब उनके जो मुख्य दार्शनिक विचार है उन पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आपने तीन बातें बताई थी शुरू में, प्रणालीगत संदेह, कुजीतो और मन शरीर द्वैतवाद।
हाँ, ये तीन स्तंभ कह सकते हैं उनके दर्शन के।
संदेह और कुजीतो पर तो हमने बात की कि शक करते हुए अपने अस्तित्व तक पहुंचना। अब ये तीसरा वाला मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, ये क्या है? ठीक ठीक
ये देकार्त के दर्शन का शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना और उतना ही ज्यादा विवादित हिस्सा है। उनका मानना था कि ये जो पूरी वास्तविकता है ना, ये दो बिल्कुल अलग तरह की चीजों या कह लीजिए सत्ताओं, सब्सटेंसेस से बनी है।
दो?
कौन कौन सी? एक है रेस कुजिटेंस, मतलब सोचने वाली सत्ता, यानी मन, आत्मा, चेतना।
अच्छा।
ये अभौतिक है, इसका कोई आकार नहीं, वजन नहीं, ये जगह नहीं घेरती, बस सोचती है।
ठीक है, और दूसरी?
दूसरी है रेस एक्सटेंसा, मतलब फैली हुई सत्ता, विस्तार वाली चीज, यानी पदार्थ, हमारा शरीर, ये मेज, ये कमरा, सब कुछ जो भौतिक है,
जिसका आकार है, जो जगह घेरता है।
बिल्कुल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है जिसकी। तो ये दो सत्ताएं, सोचने वाली मन और विस्तार वाली पदार्थ, ये पूरी तरह से अलग हैं, इनका नेचर ही अलग है।
सुनने में तो ये विभाजन काफी साफ लगता है, एक सोचने वाला मन है और एक ये भौतिक शरीर है। लेकिन लेकिन यहीं से तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।
कौन सा सवाल?
यही कि अगर मन और शरीर इतने ज्यादा अलग हैं, एक अभौतिक दूसरा भौतिक, तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं? मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना हाथ उठाना है और मेरा भौतिक हाथ उठ जाता है, मैं दुखी महसूस करती हूँ मन और आंखों से आंसू आ जाते हैं शरीर, ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये सवाल तो उनके जमाने में भी लोगों ने पूछा होगा।
बिल्कुल, यही तो है वो मशहूर मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जो दरअसल देकार्त ने ही इतने साफ तौर पर खड़ी की। और सच कहूं तो ये समस्या आज भी, इतने सालों बाद भी, दर्शन में, मनोविज्ञान में, न्यूरोसाइंस में एक बड़ी पहेली बनी हुई है।
तो देकार्त ने इसका क्या जवाब दिया था? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने।
हाँ, उन्होंने कोशिश की थी एक कच्चा पक्का जवाब देने की। उन्होंने कहा कि शायद हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड, हाँ।
तो शायद वो जगह है जहां ये अभौतिक मन और भौतिक शरीर आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं।
लेकिन ये जवाब, क्या ये माना गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जवाब किसी को भी, यहां तक कि उनके समर्थकों को भी, ज्यादातर संतुष्ट नहीं कर पाया। ये बहुत कमजोर दलील लगी सबको।
हाँ, ये तो लगता है जैसे बस एक अंदाजा लगा दिया। खैर, तो इन विचारों का असर क्या हुआ? आपने कहा था कि वो तर्कवाद, रेशनलिज्म के बड़े पैरोकार बन गए।
सही।
तर्कवाद यानी वो विचारधारा जो मानती है कि ज्ञान का असली भरोसेमंद स्रोत हमारी बुद्धि है, हमारा तर्क है, न कि हमारी इंद्रियां, हमारा अनुभव।
और इसके उलट कौन थे?
इसके उलट थे अनुभववादी, एम्पिरिसिस्ट्स, जैसे इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन थे, बाद में जॉन लॉक आए। वो मानते थे कि सारा ज्ञान जन्म के बाद अनुभव से ही आता है, दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है।
अच्छा।
तो देकार्त अनुभव को उतना महत्व नहीं देते थे?
ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देते थे, लेकिन उनके लिए असली ज्ञान तर्क और बुद्धि से आता था। उन्होंने गणित को ज्ञान का आदर्श माना।
गणित को क्यों?
क्योंकि गणित में देखिए, हम कुछ स्वयं सिद्ध सत्यों से शुरू करते हैं जिन पर कोई शक नहीं होता, और फिर उनसे तर्क के सहारे कदम ब कदम आगे बढ़ के नए नतीजे निकालते हैं।
हाँ, जैसे ज्योमेट्री में होता है।
बिल्कुल, देकार्त चाहते थे कि दर्शन में भी ऐसा ही हो, कुछ अकाट्य सत्यों से शुरू करो और फिर तर्क से पूरा ज्ञान का सिस्टम खड़ा करो।
और गणित में तो उनका अपना योगदान भी बहुत बड़ा था, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्कूल में पढ़ते हैं हम सब, एक्स वाई एक्सिस वाला, वो उन्हीं की देन है ना?
अरे हाँ, ये तो क्रांतिकारी चीज थी। इसने ज्यामिति यानी रेखा गणित और बीज गणित को एक साथ मिला दिया, इससे एनालिटिकल ज्योमेट्री का जन्म हुआ। ये बहुत बड़ा योगदान था।
और उनका वो विचार कि भौतिक दुनिया एक मशीन की तरह काम करती है।
हाँ, मैकेनिकल फिलॉसफी, कि ये दुनिया, ये प्रकृति, ये सब एक बड़ी मशीन की तरह है जो गणित के नियमों का पालन करती है। इसे समझा जा सकता है, इसके पुर्जे खोले जा सकते हैं, इस सोच ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में बहुत मदद की।
तो जाहिर है, एक तरफ उनके विचारों का जबरदस्त स्वागत हुआ होगा, कार्टेशियनवाद नाम का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया।
हाँ बिल्कुल, उनके अनुयायी बने।
लेकिन विरोध भी तो हुआ होगा ऐसे क्रांतिकारी विचारों का।
हाँ, दोनों बातें हुई, जबरदस्त स्वागत भी और उतना ही कड़ा विरोध भी। उनके विचारों ने बारूची स्पिनोजा और लाइबनिस जैसे महान तर्कवादी दार्शनिकों को सीधे तौर पर प्रेरित किया।
लेकिन विरोधी कौन थे?
एक तो धार्मिक संस्थाएं उनसे बहुत नाराज थीं, खासकर कैथोलिक चर्च। चर्च ने 1663 में उनकी कई किताबों को निषिद्ध पुस्तकों की सूची यानी इंडेक्स ऑफ फोरबिडन बुक्स में डाल दिया।
क्यों? उन्हें क्या आपत्ति थी?
उन्हें आपत्ति थी डेकार्त के व्यक्ति के तर्क पर इतना ज्यादा जोर देने से। ये चर्च के अपने अधिकार को चुनौती देता था। अगर हर व्यक्ति अपने तर्क से सच जान सकता है तो फिर चर्च की क्या जरूरत?
बात तो है। और अनुभववादी दार्शनिकों ने भी विरोध किया होगा।
हाँ, अनुभववादियों ने उनके तर्कवाद की, उनके जन्मजात विचारों इनेट आइडियाज के सिद्धांत की तीखी आलोचना की।
लेकिन आज भी उनकी बातें प्रासंगिक है ना, खासकर वो मन शरीर वाली समस्या।
बिल्कुल बनी हुई है। आज भी हम जूझ रहे हैं कि चेतना क्या है, ये दिमाग के न्यूरॉन से कैसे पैदा होती है, मन और शरीर का रिश्ता क्या है, ये सब डेकार्त के उठाए सवाल ही हैं।
और वो जो एक विचार है जार में मस्तिष्क, कि क्या पता हम असल में एक जार में रखे दिमाग हों और कोई हमें सारे अनुभव भेज रहा हो, क्या ये भी डेकार्त से जुड़ा है?
हाँ, इसीदे तौर पर डेकार्त की उस दुष्ट दानव वाली कल्पना से निकला है। डेकार्त ने मेडिटेशंस में सोचा था कि क्या पता कोई बहुत शक्तिशाली शैतान हो जो मुझे लगातार धोखा दे रहा हो। मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया देख रहा हूँ, पर शायद ये सब उसका बनाया भ्रम हो।
अच्छा,
तो जार में मस्तिष्क वाला थॉट एक्सपेरिमेंट इसी शक को चरम पर ले जाता है कि हम अपने अनुभवों की सच्चाई के बारे में कितने निश्चित हो सकते हैं।
और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में,
हाँ, AI और चेतना की प्रकृति पर जो बहसें चल रही हैं, उनमें डेकार्त की सवाल बार बार गूंजते हैं। उनकी जो आलोचनात्मक सोच की विधि है वो आज भी उतनी ही जरूरी है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के अलावा और कौन से हैं जो अक्सर लोग दोहराते हैं?
एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात उन्होंने डिस्कोर्स ऑन द मेथड की बिल्कुल शुरुआत में कही थी। वो कहते हैं, सिर्फ एक अच्छा दिमाग होना ही काफी नहीं है, मुख्य बात है उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना।
मतलब दिमाग की ताकत होना एक बात है, उसे सही तरीके से लगाना दूसरी बात।
बिल्कुल, उनका मानना था कि तर्क की शक्ति तो कमोबेश सब में होती है, पर उसे सही तरीके से एक विधि से इस्तेमाल करना जरूरी है।
और उनकी विधि का एक नियम भी तो बड़ा मशहूर है कि समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटो।
हाँ, ये उनके मेथड का दूसरा नियम था। वो कहते थे, हर कठिनाई को उतने हिस्सों में बांटें जितना उसे हल करने के लिए संभव और आवश्यक हो।
ये तो आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल होता है।
हाँ बिल्कुल, ये एक बुनियादी सिद्धांत है। एक और अच्छी बात उन्होंने कही थी किताबों के बारे में, सभी अच्छी किताबों को पढ़ना पिछली सदियों के बेहतरीन दिमागों के साथ बातचीत करने जैसा है।
वाह, ये दिखाता है कि अपने तर्क पर इतना जोर देने के बावजूद वो ज्ञान की जो परंपरा थी उसका सम्मान करते थे।
हाँ बिल्कुल।
अच्छा, अब जरा आलोचनाओं पर वापस आते हैं। मन शरीर समस्या की बात तो हुई, एक और आलोचना थी कार्टेशियन सर्कल, वो क्या था?
हाँ, ये एक गंभीर दार्शनिक आलोचना है। आलोचकों का कहना है कि ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के चक्कर में डेकार्त एक तरह के गोलमोल तर्क मतलब सर्कुलर रीजनिंग में फंस जाते हैं।
कैसे?
देखिए, वो कहते हैं कि मेरे जो स्पष्ट और सुस्पष्ट विचार हैं, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, जैसे गणित के सत्य, वो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि एक सच्चा और भला ईश्वर मौजूद है जो मुझे धोखा नहीं देगा।
ठीक है,
लेकिन फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है, तो वो कहते हैं कि ईश्वर का विचार मेरे मन में एक स्पष्ट और सुस्पष्ट विचार है, इसलिए वो सच्चा है।
ओह, मतलब ईश्वर है इसलिए मेरे विचार सच्चे हैं और मेरे विचार सच्चे हैं इसलिए ईश्वर है।
हाँ, कुछ ऐसे ही। ए सच है क्योंकि बी सच है और बी सच है क्योंकि ए सच है, इसे ही कार्टेशियन सर्कल कहते हैं। ये एक तार्किक खामी मानी जाती है उनके सिस्टम में।
हाँ, ये तो वाकई फंसाने वाला तर्क है। और जानवरों के बारे में उनके विचार भी तो काफी विवादित रहे हैं।
बेहद, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मानते थे कि सिर्फ इंसानों के पास सोचने वाली आत्मा रेस कॉजिटेंस होती है।
हाँ,
इसलिए जानवर उनके हिसाब से महज जटिल मशीनें थे, ऑटोमेटा।
मतलब उनमें चेतना नहीं थी, भावनाएं नहीं थीं।
डेकार्त के अनुसार नहीं, वो दर्द महसूस नहीं कर सकते थे, वो बस प्रतिक्रिया देने वाली मशीनें थे।
अरे बाप रे, ये तो बहुत।
हाँ, इस विचार के बहुत भयानक नैतिक परिणाम हुए। इसकी बहुत कड़ी आलोचना होती है कि इसने शायद जानवरों के प्रति क्रूरता को एक तरह का दार्शनिक आधार दे दिया।
और आजकल के दौर में भी कुछ आलोचनाएं होती हैं, जैसे उनके विचारों का कोई लैंगिक पहलू भी देखा जाता है।
हाँ, कुछ आधुनिक, खासकर नारीवादी आलोचक ये तर्क देते हैं कि डेकार्त ने जो मन तर्क, जिसे पारंपरिक रूप से पुरुषत्व से जोड़ा गया, को शरीर, भावना, प्रकृति, जिसे स्त्रीत्व से जोड़ा गया, से एकदम अलग और श्रेष्ठ माना।
हाँ,
उसने कहीं ना कहीं पश्चिमी सोच में भावनाओं को शरीर से जुड़े ज्ञान को कमतर आंकने में भूमिका निभाई, और एक अमूर्त किस्म की तार्किकता को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। ये सब जाहिर है जटिल व्याख्याएं हैं जिन पर आज भी बहस होती है।
समझ रही हूँ। चलिए अब कुछ हल्के फुल्के किस्से सुनते हैं डेकार्त के बारे में। उनकी देर से उठने वाली आदत तो हमने सुन ली, और क्या खास बातें थी उनके बारे में? उनकी मौत का किस्सा भी कुछ अजीब है।
हाँ, उनकी मौत वो स्वीडन में हुई थी। सिर्फ 53 साल के थे।
उन्हें दर्शन पढ़ने का बड़ा शौक चढ़ा।
अच्छा।
और उन्होंने डेकार्त को अपने यहाँ स्टॉकहोम बुला लिया पढ़ाने के लिए। अब रानी साहिबा की मर्जी, वो सुबह 5 बजे पढ़ना चाहती थी,
सुबह 5 बजे।
और डेकार्त तो देर से उठते थे।
हाँ,
तो बेचारे डेकार्त को अपने जीवन भर की आदत छोड़नी पड़ी, और स्टॉकहोम की वो कड़ाके की ठंड, उसमें सुबह सुबह निकलने से उन्हें निमोनिया हो गया, और उसी से उनकी मौत हो गई।
ओह,
मतलब रानी के शौक ने महान दार्शनिक की जान ले ली। क्या किस्मत है।
हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ।
और मैंने सुना है उनके सिर के साथ भी कुछ अजीब हुआ था बाद में।
अरे, वो कहानी तो और भी विचित्र है। उनकी मौत के बाद उनके शरीर को तो स्वीडन में दफना दिया गया, लेकिन किसी ने उनका सिर निकाल लिया।
क्या, क्यों?
पता नहीं क्यों, शायद यादगार के तौर पर या किसी और वजह से। और वो खोपड़ी, वो करीब 150 सालों तक इधर उधर घूमती रही, अलग अलग कलेक्टरों के पास।
सच में?
हाँ, और बड़ी मुश्किल से सालों बाद उसे पेरिस लाया गया और उनके बाकी अवशेषों के साथ मिलाया गया।
क्या बात है। अच्छा, और वो स्टोव हीटेड रूम वाला किस्सा क्या है, जहां उन्हें वो सपने आए थे?
हाँ, कहते हैं कि जब वो सैनिक थे जर्मनी में, तो किसी अभियान के दौरान शायद बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उन्हें एक दिन एक गर्म कमरे में, शायद जिसमें स्टोव जल रहा था, उसी में बंद रहना पड़ा।
अकेले?
हाँ, अकेले। और उसी एकांत में, उसी गर्मी में, उन्हें वो गहरे बदलने वाले सपने आए। 10 नवंबर 1619 की रात।
कमाल है। एक और बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो, उनकी एक बेटी भी थी।
हाँ, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। नीदरलैंड में जब वो रहते थे, तो उनकी एक नौकरानी थी, हेलेना जैन्स बैंडरस्ट्रॉम। उनके साथ डेकार्त के संबंध थे, और उनसे उनकी एक बेटी हुई थी, फ्रेंसीन।
अच्छा।
डेकार्त उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेचारी 5 साल की उम्र में ही स्कॉलेट फीवर से मर गई। चढ़ाव थे।
हाँ, ये सब जानकर डेकार्त की एक ज्यादा मानवीय तस्वीर उभरती है। तो कुल मिलाकर देखें, डेकार्त वो शख्स थे जिन्होंने हमें अपने होने पर, अपने सोचने पर यकीन करना सिखाया, है ना?
बिल्कुल। उन्होंने शुरुआत खुद से की,
और उन्होंने सवालों की एक ऐसी झड़ी लगा दी। मन क्या है, शरीर क्या है, हम ज्ञान पर कैसे भरोसा करें, ये दुनिया असली है या भ्रम, जो आज तक सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा। उनकी विरासत बहुत जटिल है, उसमें शानदार उपलब्धियां हैं तो मुश्किल पहेलियां भी हैं, विवादित विचार भी हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने पश्चिमी दर्शन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। शायद अंत में ये सोचना दिलचस्प होगा, आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, ऐसी मशीनें जो सोचने का नाटक कर सकती हैं, तर्क कर सकती हैं, तो डेकार्त का वो "मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ" इसका क्या मतलब रह जाता है?
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
क्या सिर्फ तर्क कर पाना ही चेतना का होने का प्रमाण है, या हमें मन और शरीर के उस रिश्ते को समझने के लिए डेकार्त से भी आगे जाना होगा, उस रिश्ते को जिसे उन्होंने इतनी सफाई से अलग तो कर दिया था, पर शायद पूरी तरह जोड़ नहीं पाए थे।
वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ दिया आपने। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।